जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवद्गीता की जय गौर निताई की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल हरि हरि बोल जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो हम सबको पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड जैसे कि आप सबको पता कि हम सब अपने आत्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में हमारा सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरंभ हो चुका है जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारा भगवद गीता कोर्स हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। और सबसे बड़ी बात है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, ऐसी हमारी आध्यात्मिक यात्रा ऐसी हमारे तीर्थ यात्रा हमारे घर पे ही आरंभ हो चुकी है। तो सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारी बुद्धि में आए, है ना, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनकी इंस्ट्रक्शंस को उनके गीत को अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन में अपना कर खुश रह सकें। तो फ्रेंड जैसे कि आप सबको पता है हम लोग अध्याय दो अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली कर रहे हैं, है ना, सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं और उसमें कुछ श्लोक हमने किए थे, थोड़ा सा पहले मैं रिवाइज कर लेती हूँ। सातवें श्लोक में हमने समझा कि अर्जुन ने मान लिया कि मैं भ्रमित हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे अपना शिष्य बना लो। भगवान से प्रार्थना कर रहा है वो सेकंड चैप्टर के सातवें श्लोक में कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं भ्रमित हूँ, आप मुझे अपने शिष्य बना लो और आप मेरे गुरु बन जाओ, है ना, और मुझे उपदेश दो। फिर 11वें श्लोक से भगवद गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं भगवान। सबसे पहले भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया अर्जुन को, है ना, और ये समझाया कि जो भी लाइफ में सुख या दुख की परिस्थितियां आती है ना वो हमारे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होती है, हमारी सेंस परसेप्शंस है। तो भगवान ने हमें संदेश दिया कि हमें बिना विचलित हुए उसको संभाव से डील करना आना चाहिए। फिर भगवान ने आगे कहा कि भाई मुक्ति के योग्य कौन है, जो सुख और दुख को संभाव से डील करना सीख ले तो वो मुक्ति के योग्य है, है ना। और भगवान ने हमें पूरी भगवद गीता में ऐसा कुछ नहीं बताया कि अगर तुम भक्ति करोगे भगवद गीता पढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे, है ना। तो ऐसी आशा लेकर हमें नहीं चलना है, हमें ये मानकर चलना है कि जीवन में कष्ट भी आएंगे और सुख भी आएंगे, है ना। तो भगवान से जुड़कर हमें उनको सहना है, है ना। तो भगवान हमें आज्ञा दे रहे हैं कि जो भी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो मेरी आज्ञा है कि तुम उन्हें सहो और संभाव में रहना सीखना। जो कल हमने श्लोक किए थे 22वां और 23 दो श्लोक किए थे, है ना। तो फिर भगवान ने हमें 22वें श्लोक में हमें समझाया कि आत्मा को छोड़कर हमारा शरीर बदल जाता है, बाकी सब कुछ बदलता है। जो भी चीजें तुम्हें दिख रही है ना सामने, है ना, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ बदल जाता है, है ना, इवन हमारा शरीर भी बदल जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भी जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर तुम नए वस्त्र ग्रहण करते हो वैसे ही आत्मा पुराने जर्जर शरीरों को त्याग कर नए शरीर प्राप्त करती है। तो भगवान क्लियर बता रहे हैं कि भाई शरीर की आयु होती है आत्मा की नहीं, जब देह की आयु पूरी हो जाती है तब आत्मा अपने दूसरे घर चली जाती है, है ना। जैसे कि प्राणी पहले बालक होता है, फिर वो युवा होता है, फिर वो वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, फिर वो मृत्यु को प्राप्त करता है। किंतु भगवान कह रहे हैं कि ये यात्रा शरीर की है और आत्मा ने एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करना ही करना है ना। तो भगवान हमें इसमें परिवर्तन का नियम समझा रहे हैं, साइंस ऑफ सोल समझा रहे हैं। देखो भगवान ने हमें ये आत्मा का ज्ञान दिया है ना, कई लोग इसको नेगेटिव लेते हैं। देखो अगर हमें इतना बड़ा परिवर्तन ही समझ आ गया कि भी हमने शरीर ही छोड़ देना है तो हमें छोटे छोटे परिवर्तन जो लाइफ में आते हैं जैसे कोई ट्रांसफर हो जाती है या फिर एक लड़की मैरिज के बाद दूसरे घर जाती है तो उसको जो परिवर्तन से दुख होता है ना, तो एक व्यक्ति को अगर देखो 100 kg के डंबल्स उठाने की हैबिट होगी तो उसको 10-20 किलो के डंबल्स क्या बोलते हैं, है ना। तो अगर हमें आत्मा का ही ज्ञान हो गया, अगर हमें यही समझ आ गया कि एक दिन तो हमने शरीर ही छोड़ देना, तो ये छोटे छोटे परिवर्तन तो जब लाइफ में आएंगे, जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं या अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो भगवान ने हमें क्या कहा है कि उसको सहो और समभाव में रहना है। और फिर हमने किया था 23वां श्लोक, है ना। तो भगवान ने उसमें भी आत्मा का ही हमें ज्ञान दिया, आत्मा के नेचर के बारे में बताया कि भगवान कह रहे हैं कि भाई आत्मा का विनाश कभी नहीं होता, ना तो आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है उसको, और ना ही आत्मा को वायु सुखा सकती है। देखो ये जब बातें हम सुनते हैं ना, आत्मा का ज्ञान जब भगवान हमें देते, सबसे पहले हमें भगवान ने आत्मा का ही ज्ञान दिया है। इसको दो तरह से समझना है, या तो देखो कौन सी बातें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है, एक तो मैं सब कुछ कर रही हूँ, है ना, सारे काम सिंसियरिटी से करती हूँ, लेकिन मुझे पता भी नहीं लगेगा और एक दिन शरीर छोड़कर हम चले जाएंगे, है ना। और दूसरी बात है कि मैं सनातन हूँ, मेरा कभी भी नाश नहीं हो सकता, और पहले में कि पता ही नहीं है लाइफ का कि कब मृत्यु आ सकती है ना। तो इस बात को सोचकर हम डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमने एक दिन शरीर छोड़ देना है या हमारे लव्ड वंस ने शरीर छोड़कर चले जाना है। और इस बात को सोचकर या इस बात को सहकर भी कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो पहले में हम सोच रहे हैं कि शरीर छोड़ देना है तो हम डिप्रेस हो जाएंगे, और दूसरे में हम क्या सोच रहे हैं कि भाई हमारा कभी भी नाश नहीं हो सकता। तो एक में फियर है और दूसरी सोच में हम निर्भय हो जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो ममता जी। हरी बोल।
हरे हरे बोल। अध्याय 2 श्लोक नंबर 27। जो जन्म लेता है वे अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा, वह मृत्यु के बाद फिर से जन्म निश्चित है, इसलिए तुम्हें इस बिना उपाय वाले विषय में संताप नहीं करना चाहिए। आई रिपीट, जो जन्म लेता है वे अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा, वह मृत्यु के बाद फिर से जन्म भी निश्चित है, इसलिए तुम्हें इस बिना उपाय वाले विषय में संताप नहीं करना चाहिए। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। फ्रेंड्स, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। इसमें भी आत्मा के नेचर के बारे में बताया जा रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसको भी एक दिन शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा, है ना। क्या कह रहे हैं भगवान कि भाई जिसका भी जन्म हुआ है उन सबको एक दिन शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर उसको अपने कर्मों के अनुसार उसको दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। और भगवान कह रहे हैं कि भाई ये चेंजेस कोई नहीं रोक सकता। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें ये समझा रहे हैं कि जो भी ड्यूटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, वो चाहे वो समाज कल्याण से रिलेटेड हो, उसमें जो हमें शो करते रहने की आदत पड़ जाती है ना, हमें वो नहीं करना। जनरली देखो लोगों को अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में क्या होता है, रोने की आदत पड़ जाती है कि मुझे काम करना पड़ रहा है। ऐसा आपने हर व्यक्ति से सुना होगा कि मुझे करना पड़ रहा है, जो करना पड़ रहा है ना। जनरली जो पुराने लोग थे ना, उनमें ये वाली हैबिट नहीं थी पुरानी जनरेशन के लोगों में, लेकिन आजकल बच्चे से लेकर बड़े तक यही बोलते हैं कि भाई मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मैं बहुत काम करती हूँ, है ना। घर में थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ जाए तो हर एक चीज में हम बस रोने की आदत है, हम इतने कम्फर्ट्स है लाइफ में, भगवान की कृपा है, लेकिन कुछ काम करना पड़ जाए, किसी के लिए कुछ करना पड़ जाए तो हमें वहां पे रोने की आदत पड़ जाती है ना। तो एक मजबूरी का भाव ले आए हैं हम लोग अपनी एवरीडे लाइफ की ड्यूटीज में, है ना। तो जब हम ड्यूटीज रोते हुए करेंगे तो भगवान कहाँ से खुश होंगे, फिर हम ही खुश नहीं होंगे तो भगवान तो कहाँ ही खुश हो जाएंगे कि भगवान ने अपनी असाइन ड्यूटीज हमें दी हैं, एक लाइफ दी है। घर में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड है ना, हस्बैंड है तो उनकी वाइफ है, तो उनका पालन पोषण करना हमारी जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन वहां पे हम क्या करते रहते हैं, रोते धोते अपनी जिम्मेदारी को पूरी करते हैं, पूरा दिन रोते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई जो जन्म लेता है वे अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म निश्चित है। फिर आगे क्या कहा भगवान ने कि तुम्हें बिना उपाय वाले विषय में संताप नहीं करना चाहिए, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसी बहुत सारी सर्कमस्टांसेस हमारे लाइफ में आती हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमारे आगे आएंगी, आती भी हैं और आएंगी भी, जिसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, बहुत सारी सिचुएशंस हमारे हाथ में होती हैं और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, उसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए, है ना। ज्यादातर क्या होता है कि जो अनफेवरेबल सिचुएशंस हमारे आगे आ जाती हैं, है ना, तो हम फिर सालों साल रोते रहते हैं उस सिचुएशन को लेकर कि ये क्यों हुआ, काश ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, कैसे हो गया ये, तो कई सर्कमस्टांसेस हम बदल सकते हैं फ्रेंड्स, और कई सर्कमस्टांसेस कई सिचुएशंस हम नहीं बदल सकते, इसको हमें समझना है ना। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या कह रहे हैं कि तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए, मतलब हमें भगवान लेट गो की ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखो भगवद गीता पढ़ने से हमें भगवान हर एक चीज की नॉलेज देते हैं, हमारे जो गलत थिंकिंग पैटर्न्स है बचपन से, जो हमारे आसपास के लोगों के द्वारा जो हम चीजें सीखते हैं वो राइट नॉलेज नहीं मिली होती है हम लोगों को, है ना। तो भगवान हर एक श्लोक में हमें लर्निंग्स देते हैं, हमारे जो अंदर है ना रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न्स है, भगवद गीता के श्लोक उन थिंकिंग पैटर्न्स को बदल देते हैं फ्रेंड्स। इसलिए भगवद गीता हमारा बेस्ट काउंसलर है। भगवद गीता के श्लोक हमें ये समझा रहे हैं कि भाई जो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है उसे क्या करना चाहिए, उसमें हमें उसको जाने देना चाहिए, उसमें लेट गो का भाव होना चाहिए। और दूसरा फ्रेंड्स देखो, चैप्टर वन में अर्जुन क्यों परेशान हो रखा है, क्यों क्यों उसको लग रहा है कि मेरे सारे रिलेटिव्स मेरे सारे परिजन मारे जाएंगे, है ना, उसको क्या लग रहा है कि सब मेरी वजह से ही हो रहा है। तो जब रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न होता है ना हमारे अंदर, तो हमें क्या लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ, कुछ गलती हो जाए तो हम सालों साल अपने आप को विक्टिम मानकर डिप्रेस करते रहते हैं, और ये डिप्रेशन तक भी पहुंच जाती है ये सारी बातें, रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न्स, है ना। तो अर्जुन को भी यही लग रहा है कि भाई मेरी वजह से मेरे परिवार के लोग मारे जाएंगे, है ना, उसको क्या लग रहा है मैं ये सब कर रहा हूँ तो ये सब लोग मारे जाए, है ना। तो अर्जुन को किससे डर लग रहा है, अर्जुन को बदलाव से डर लग रहा है ना, उसको लग रहा है कि मेरे सारे फेवरेट लोग मेरे लव्ड वंस मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो उसको बदलाव से डर रहा है। तो ड्यूटी करते समय चैप्टर वन में शोक आ रहा है अर्जुन को, दुखी हो रहा है वो, तो देखो यहाँ पर डेथ की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि अगर जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद दोबारा जन्म निश्चित है, तो फिर हमें शोक ही क्यों करना है, क्यों छोटे छोटे बदलाव से हमें घबराना है ना। शरीर छोड़ने के कंपैरिजन में बाकी बदलाव कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स उसके आगे, है ना, बाकी बदलाव तो आने ही आने हैं लाइफ में। हम दुखी इसलिए होते हैं फ्रेंड्स क्योंकि हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया होता कि जीवन में बदलाव आएंगे, हमें क्या लगता है कि लाइफ जैसी चल रही है बस वैसी ही चलती रहे तो मैं खुश हो जाऊंगी, है ना। तो अगर आप थोड़ा रेडी रहो कि लाइफ में बदलाव आएंगे ही आएंगे, और कुछ सिचुएशंस हम हैंडल कर पाएंगे और कुछ सिचुएशंस हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। जैसे एक बार कि एक राजा ने मंत्री को पूछा कि कुछ ऐसा बताओ जिसे सुनकर सुखी दुखी हो जाए और दुखी सुखी हो जाए, तो वो मंत्री ने राजा को कहता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो जब सुख का टाइम आता है तो राजा पढ़ता है ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो वो दुखी हो जाता था यार ये इतना सुख के कंफर्ट्स है मेरे को, लेकिन फिर भी ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन अगर वो दुख में पड़ता था ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो वो सुखी हो जाता था कि उसको लगता था ये वक्त भी गुजर जाएगा, है ना। तो कोई भी सिचुएशन कोई भी सर्कमस्टांसेस स्थाई नहीं है फ्रेंड्स, इस बात को समझना है हमें। हमारे हाथ में ये नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, पास्ट में जो हो गया वो हमारे हाथ में नहीं है, है ना। जो गलतियां होगी या जो कुछ अच्छे पल आए जीवन में, है ना, वो सब हमारे हाथ में नहीं है, वो चले गए हैं ना। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है आज का दिन, है ना। क्या हमें पता था कि 2-3 साल पहले कोरोना वायरस आने वाला है, दुनिया में लॉकडाउन हो जाएगा, पूरी दुनिया घर में बंद हो जाएगी, है ना। सबने ये सिचुएशंस को हैंडल किया हुआ है ना। किसी साइंटिस्ट को भी नहीं पता था, है ना, किसी को नहीं पता होता कि फ्लड आ जाते हैं, अर्थ को एक आ जाते हैं शहरों में, है ना। तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। कुछ परिवर्तनों का तो हमें पता लगता है, लेकिन कुछ परिवर्तनों का हमें पता भी नहीं लगता। अब देखो अर्थ को एक आने वाला है या फ्लड आने वाले हैं या लॉकडाउन आने वाला है, ये तो हमें पता नहीं था। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि मैं एक मदर हूँ और मदर के रूप में मुझे एक ड्यूटी मिली है, या मैं एक फादर हूँ तो बच्चों के रूप में मुझे एक ड्यूटी मिली है, घर के रूप में मेरी एक ड्यूटी है, है ना, कि बच्चों को मुझे अच्छी परवरिश देनी है, घर की देखभाल करनी है, है ना। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो पेशेंट्स की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, है ना। अगर मैं टीचर हूँ तो बच्चों को थोड़ी मॉरल एजुकेशन भी देनी है, है ना। तो भगवान हमें समझा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि भाई जो भी तुम्हारी ड्यूटीज हैं, जो भी तुम्हारे कर्तव्य हैं, जैसे अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपनी ड्यूटीज में शोक मत करो, तुम्हें ये सीखना चाहिए, है ना। और एक वर्ड होता है ना कि करना पड़ रहा है, लगता है कि मुझे ही करना पड़ रहा है ये सारे काम, है ना, इसीलिए हम रोते रहते हैं। बस कोई भी काम करने में हमें रोना होता है, कोई भी काम हम हंसते हुए नहीं करते, है ना। ज्यादातर लोग जीवन में काम खुश होकर सुखी होकर नहीं करते, मजबूरी से हम सारे काम करते हैं क्योंकि एक लाइफ पैटर्न ही बन गया, बचपन से हमने वो चीजें देखी हुई है तो हम भी अपने लाइफ में ये सब चीजें ऐड कर लेते हैं, या हमने आसपास के लोगों को देखा है जीवन जीते हुए रोते हुए, वही चीज हम अपने जीवन में ऐड कर लेते हैं। कहाँ से सीखते हैं हम, वही आसपास के 10-15 लोगों से सीखते हैं ये सब बातें। ये जो
पुरानी यादें होती हैं, उन्हीं से पैटर्न्स बनते हैं हमारे, है ना। करने तो पड़ने ही है, देखो काम हमें करने पड़ते ही है ना, जो भी हमें साइन ड्यूटीज हैं एज ए हाउस वाइफ, जैसे मुझे अपने बच्चों को देखना है, लुक आफ्टर करना है, या घर को देखना है ना, या वर्किंग वुमेन है वो टीचर है तो वो स्कूल को देखती है ना, बच्चों को पढ़ाना है, घर में भी काम करना है, तो उनके उनको काम तो करने पड़ेंगे। या मुझे भी हाउस वाइफ हूँ तो मुझे भी तो घर के काम करने हैं ना, करने तो हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम संताप के साथ मत करो, परेशान होकर कार्य मत करो अपने, है ना। अब मान लो आपको नहीं पता था कि आपके रिलेटिव आएंगे आज घर, है ना, तो दो चॉइसेस है ना हमारे पास, कि हम उनको अच्छे से अटेंड करें, या फिर हमारे पास दूसरी चॉइस है कि हम रोते रोते उनको अटेंड करें, है ना। तो चॉइस तो हमने लेनी है ना कि हम रोते हुए उनको अटेंड करें। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ड्यूटीज आती हैं आप सिर्फ ये करो, आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि जो भी ड्यूटीज आपके रास्ते में आएंगी उनको खुशी खुशी करो, है ना। किसी के पेरेंट्स मान लो बहुत एज्ड है ना, मान लो उनके पास 1-2 साल है, तो हमें अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत है ताकि हम लोग उनकी सेवा कर सकें, है ना। थोड़ा भक्ति में उनको इन्वॉल्व करो, थोड़ा माला वगैरह करना सिखाओ उनको, माला नहीं होती तो उनको भगवद गीता के कुछ श्लोक ही पढ़ा दो। तो ये सोचकर ये काम करने हैं, मेरे को भगवान ने चुना है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अपने पेरेंट्स की सेवा करने का मौका ईश्वर ने दिया, है ना। आप ये मत सोचो कि बाकी क्या करने हैं, है ना, आपकी देवरानी क्या कर रही है, आपकी जेठानी क्या कर रही है, हमें ये नहीं सोचना है ना। भगवान ने मुझे चूज किए हैं उनकी सेवा के लिए, हमें ये सोचना है ना। घर में झगड़ा होने का, कला क्लेश होने का कारण यही रहता है कि 3 भाई हों तो अगर 2 भाई आउट ऑफ सिटी रहते हैं मान लो, तो जो घर में रहता है उसको लगता है कि मुझे ही करना पड़ रहा है, बाकी तो कुछ करते नहीं है। जब हम भगवद गीता समझ जाते हैं ना, तो बच्चों की सेवा करना हो या बड़ों की सेवा करना हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा करना हो, है ना, या किसी भी गेस्ट की सेवा करना हो, वो सब प्रभु भक्ति का ही अंग है, कुछ अलग नहीं है वो, है ना। तो आप सोच लो कि भाई मुझे सेवा करने को मिल रही है, भगवान की भक्ति करने को मिल रही है, खाली पूजा वही थोड़ी है, भक्ति वही थोड़ी है कि आप दिन में 2 बार बैठ जाओ वहां पे मंत्र जाप कर लो, मेरी 16 माला होगी, मेरी 32 माला होगी। खाली पूजा पाठ से ही भक्ति नहीं मिलती है, भगवान ही मिल जाएंगे। भगवान क्लियर बता रहे हैं कि भाई जो भी तुम्हें मैं ड्यूटीज दे रहा हूँ ना, उनको बिना संताप के करो, बिना रोने धोने के करो, है ना। तो क्या हो गया फिर, हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया, है ना। वही कार्य जो बोझ लग रहा था, अब वही कार्य ये सोच करके प्रभु ने सेवा दी है, है ना। तो वही सेम कार्य करने में भगवान हमें एनर्जी दे देते हैं। भगवान के पास तो अनलिमिटेड एनर्जी है ना, बट हमें क्यों नहीं देते भगवान, क्योंकि जब हमारा एटीट्यूड गलत हो जाता है ना, तो हम अपने एनर्जी के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि हम जब हम नकारात्मक एटीट्यूड रखते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो फिर भगवान भी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने यही एटीट्यूड रखना है तो जो सेवा मैंने तुम्हें दी थी तो तुम्हें फिर वो फीलिंग ही बोझ वाली आएगी, सब कुछ तुम्हें बोझ ही लगेगा। अगर तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग है तो तुम्हें ये बोझ वाली फीलिंग ही आएगी, यही लगेगा जीवन में कि सब कुछ यार मुझे ही करना पड़ रहा है, मुझे ही करना पड़ रहा है। और जो नेगेटिव थिंकिंग होती है फ्रेंड्स, उससे क्या हम सुखी हो पाते हैं? देखो भगवद गीता पढ़ने से हमारा थिंकिंग पैटर्न नहीं बदला है ना, कुछ और थोड़ी हुआ है, कुछ बाहर के सर्कमस्टांसेस थोड़ी बदले हैं। हमारा थिंकिंग पैटर्न बदलने से ही हमें हर चीज में यही लगता है कि भगवान ने मुझे ड्यूटीज दी है तो मेरे को उसको बेस्ट वे में करना है। कोई भी लाइफ में सर्कमस्टांसेस आ जाती है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, उसको लगता है कि मुझे बेस्ट वे में करना है। जब अच्छी सिचुएशन आ जाती है तब भी हम भगवान को नहीं भूलते, इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाते, पता है कि कुछ टाइम की सिचुएशन है, बाद में तो ये बदल जाएगी ये सिचुएशन, है ना। और जब बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन आ जाती है तब भी हम भगवान को नहीं भूलती, हमें समझ आती है कि ये जो सिचुएशन आई है मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है ना। तो हम अपनी ड्यूटीज को जो भी हमें असाइंड हुई है उस तरह से अगर हम करते हैं जैसा भगवान चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि भाई ये मेरी ड्यूटीज हैं और मुझे इसको शोक से नहीं करना है, संताप से नहीं करना है, ये सोच कर नहीं करना है कि मुझे करना पड़ रहा है, जितना मैं कर सकती हूँ मुझे उसको बेस्ट वे में करना है, प्रभु की सेवा है, प्रभु की आज्ञा है तो मुझे उसको करना है बेस्ट वे में, है ना। फिर क्या होगा, आप बोलते हो ना कि मुझे भक्ति करने के लिए टाइम नहीं मिलता, मेरे पास समय नहीं है, तो यही तो भक्ति है जो आप अपनी ड्यूटीज को बेस्ट वे में कर रहे हो। आपको लगता है कि जो भी ड्यूटीज मेरे रास्ते में आ रही है, चाहे कोई गेस्ट आ गया घर में, है ना, या कोई मुझे बड़ों की सेवा करनी पड़ती है, या बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है ना, जिसमें हम कुड़ते कुड़ते करते थे हमें सारी चीजें कि यार मुझे करना पड़ रहा है, यार मुझे करना पड़ रहा है, बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं, बच्चों को मुझे पढ़ाना पड़ रहा है ना। तो फिर हम जब उन्हीं चीजों को जब हम इस भाव से करते हैं ना कि भगवान ने मुझे सेवा दी है, तो वही तो भक्ति है, फिर हमें कोई अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। और आप ये ऑब्जर्व करना फ्रेंड, जब उस दिन बेशक आप माला नहीं कर रहे, लेकिन आपने वो दिन अगर अच्छा गुजारा, मतलब अपने बच्चों के साथ अच्छे तरह से टाइम स्पेंड किया है ना, या बड़ों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, सेवा भाव से दिन बिताया, तो अगर आपने माला नहीं भी की तो आपको वो अच्छा ही लगेगा, वो दिन भी अच्छा ही लगेगा। देखो सबसे पहले तो यही है, हमें अपने डिवोशनल एक्टिविटीज करनी चाहिए, सबसे पहले ये सब चीजें बाद की है ना, ये बातें जब हम करते जाते हैं जब हमें 2-3 साल हो जाते हैं, 2-3 साल, तो फिर हम ये बातें डिटेल में समझने शुरू करते हैं कि यार जो भी हमें असाइन ड्यूटीज है वो हमें बेस्ट वे में करनी है ना। वो आती कैसे समझ, जब हम अपनी डिवोशनल एक्टिविटी करते हैं है ना, जब हमारा मन शांत होता है, जब डिवोशनल एक्टिविटीज किसके लिए करते हैं फ्रेंड्स, जब हम डिवोशनल एक्टिविटीज करेंगे तो हम निंदा चुगली से, फालतू की ईर्ष्या द्वेष से बचे रहते हैं। भगवान का नाम जप करेंगे तो क्या होता है, अंदर से हमारा जो माइंड है ना वो खाली हो जाता है, शांत हो जाते हैं हम, है ना। फिर जो ये जो नॉलेज है ना भगवद गीता का, जो ज्ञान है ना, फिर अंदर आने शुरू होता है। अभी तो मन इतना अंदर भरा पड़ा होता है, अंदर इतना कुछ चल रहा होता है कि कुछ समझ नहीं आता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे 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 हम चलते रहते हैं, नित्य निरंतर भगवान के रास्ते में चलते रहते हैं, तो अपने आप ही भगवान नेक्स्ट स्टेप अपने आप बताते हैं। तो ड्यूटीज तो पहले भी थी, पहले आप दुनियादारी के भाव से कर रहे थे कि मुझे करना पड़ रहा है या मुझे ही करना पड़ता है, रो रो के कर रहे थे, और अब भगवद गीता का आपने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, मुझे अपनी ड्यूटीज को, चाहे मुझे बच्चों को बड़ा करने की ड्यूटी हो है ना, चाहे मुझे जॉब करने की ड्यूटी हो, चाहे मुझे समाज कल्याण के लिए कुछ थोड़ा सा इनिशिएटिव करना है मुझे अगर, है ना, तो अलग अलग प्रकार की ड्यूटीज है हमारे जीवन में। तो हमें अपने एटीट्यूड में ये वाला भाव लाना है कि हमें अपनी ड्यूटीज खुश रहकर सेवा भाव से करनी है, और ये नहीं कहना है कि मुझे करना पड़ रहा है, रोते नहीं रहना है, खुशी खुशी अपनी ड्यूटीज करनी है ना। देखो कईयों को लगता है कि यार मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, और किसी घर में खाना बनाने के लिए खाना ही नहीं है ना। आपको पता है कि एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हों एक टाइम खाना खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं होता, पैसे नहीं होते, और हमें क्या लगता है कि हमें खाना बनाना पड़ रहा है, किसी को लगता है कि मुझे नौकरी करनी पड़ रही है, और कोई तरसता है उसके पास जॉब ही नहीं होती है, जॉब नहीं होगी तो उसके पास पैसे नहीं होंगे कि वो राशन भी लेके आए, अनाज लेकर आए, घर में बच्चों को खाना खिला सके, है ना, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उसके पास सोर्स ही नहीं है। और हम ही वो व्यक्ति होते हैं जब हम मन्नतें मांगते हैं कि भगवान मुझे बेटा दे दो, भगवान मुझे नौकरी दे दो, है ना, जब हमें उन बच्चों के लिए कुछ करना पड़ता है फिर हमें लगता है कि मुझे करना पड़ रहा है, जॉब करनी पड़ती है तो हमें लगता है कि करनी पड़ रही है ना। जब बच्चा मिल जाता है हमें तो क्या हम अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं, जब हमें काम करना पड़ता है तो फिर हमें लगता है हमें करना पड़ रहा है, जॉब मिल जाती है तो क्या हम अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं, फिर हमें लगता है कि यार मुझे करना पड़ रहा है ना। तो हम बोझ बना लेते हैं एक्चुअली काम को, और इसी वजह से हमें लगता है, हमारे गलत एटीट्यूड की वजह से हमें लगता है कि हमारे पास भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं है, है ना। तो अगर हम घर की ड्यूटी, जॉब की ड्यूटीज, अपने देश से जुड़ी ड्यूटीज खुशी से करना शुरू करते हैं फ्रेंड्स, तो प्रभु खुश होते हैं। सारी ड्यूटीज को खुशी से करना ही भक्ति का पार्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्संग नहीं सुनना है, या माला नहीं करनी है, भोग नहीं लगाना है, आरती नहीं करनी है, अपने ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, वो तो करना ही है, वो तो लाइफ का पार्ट होना ही चाहिए। जो 1-2 घंटे मैंने अपने लिए निकालने हैं तो उसमें हमने सारी डिवोशनल एक्टिविटीज करनी है, लेकिन भक्ति कैसे 24/7 हम अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, भगवान हमें ये गाइड करते हैं। भगवान हमें वो वाला जीवन नहीं जीने को बोल रहे हैं कि बस 1 घंटे की भक्ति करो फिर बाकी टाइम अपना मन गणन जीवन जियो, जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है फ्रेंड्स। और ठीक है 1 घंटे का तो हमें आनंद मिलता है, लेकिन बाकी टाइम हमें फिर खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाकी टाइम तो हम अपना मन गणन जीवन जीते हैं, तो खुशी कहां से आएगी फिर, है ना। देखिए 24 घंटे तो हम सत्संग नहीं कर सकते, 24 घंटे हम माला नहीं करेंगे, डिवोशनल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, है ना, तो बाकी टाइम तो हम अपनी ड्यूटीज ही करेंगे ना, है ना। तो उन ड्यूटीज में भक्ति को कैसे ऐड करना है, ये हमें भगवान समझा रहे हैं, है ना। और भगवान हमें समझा रहे हैं सिंपल बात कि अपनी ड्यूटीज को करते हुए मजबूरी मत बनाओ, संताप मत करो, अपनी सारी ड्यूटीज खुशी खुशी करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो उनता जी। हरी बोल।
हरी हरी बोल। श्लोक नंबर 33। यदि तुम इस धर्म रूपी संग्राम को नहीं करोगे तो तुम अपने यश को खो दोगे और तुम्हें पाप भी लगेगा। आई रिपीट, यदि तुम इस धर्म रूपी संग्राम को नहीं करोगे तो तुम अपने यश को खो दोगे और तुम्हें पाप भी लगेगा। हरी हरी बोल।
थैंक यू सो मच ममता जी। तो फ्रेंड्स, इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि तुम इस धर्म रूपी युद्ध को छोड़ दोगे, अपने धर्म रूपी कर्तव्य को छोड़ दोगे, इस युद्ध को छोड़ दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, और युद्ध का त्याग कर देने से दूसरे लोग मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर व्यक्ति भी, अर्जुन जैसा वीर व्यक्ति भी युद्ध करने से डर रहा है ना, वो मरने से डर रहा होगा इसलिए वो युद्ध करने से डर रहा है, और इससे क्या होगा, तुम्हारे यश का नाश हो जाएगा, तो अपने यश को तुम खो दोगे, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं, है ना, ताकि वो अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभाए, अपने धर्म रूपी संग्राम को अच्छी तरह से निभाए। तो फ्रेंड देखो, जैसे अर्जुन की ड्यूटी थी ना कि वो अपना धर्म रूपी युद्ध लड़े, ऐसे ही फ्रेंड हमारी जो परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में, जो चल रही होती हैं, जो भी परिस्थितियां हमारे लाइफ में हैं, वही तो हमारी लाइफ का युद्ध है, हमारी लाइफ का संग्राम है। अर्जुन के सामने तो वो कुरुक्षेत्र का युद्ध उसका स्ट्रगल था, उसका धर्म युद्ध था, और हमारे सामने जो लाइफ में जो भी हमारी परिस्थितियां आती हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस आती हैं, वो हमारा युद्ध है, वो हमारा कुरुक्षेत्र है, वो हमारी स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं। हम लोग इतना खोए होते हैं ना अपने जीवन में, मनगढ़ंत जीवन में, जीवन में नहीं, मनगढ़ंत जीवन जीने में हम इतना खोए होते हैं, निंदा चुगली में हम इतना खोए होते हैं, है ना, अपने ईर्ष्या द्वेष में इतना खोए होते हैं कि हमें इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कि उसके बेस पर ही भगवान हमारी असेसमेंट कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी असेसमेंट हो रही है ना। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको व्यक्तिगत लाभ हानि से रिलेट करके सोचते रहते हैं कि कहाँ मेरा लाभ हो जाए, बस कहाँ मेरा फायदा हो जाए, कहाँ मेरा मान सम्मान बढ़ जाए, हम सिर्फ यही सोच रहे होते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि जो भी मैं लाइफ जी रही हूँ ना उसकी असेसमेंट परमात्मा कर रहे हैं। हम लोग मस्त है अपने जीवन में, छल कपट वाला जीवन, ईर्ष्या द्वेष राग मोह के साथ हम मस्त है, और भगवान देख रहे हैं कि ये लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, मुझे ध्यान में रखकर ही अपना जीवन जी रहे हैं या खुद में मस्त हुए पड़े हैं। हम लोग भगवान की तरफ जा रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो काम भगवान को समर्पित है, या हमारा डाउनफॉल हो रहा है। देखो चैप्टर 1 के 36वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था भगवान श्री कृष्ण को कि इन अत्याचारियों को मारकर हमें पाप लगेगा, तो अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अब चैप्टर 2 के 33वें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि भाई अगर तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तब तुम्हें पाप लगेगा, इन अत्याचारियों को मारकर तुम्हें कोई पाप नहीं लगने वाला। और भगवान आगे ये भी बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम अपने यश को, अपनी कीर्ति को भी खो बैठोगे। देखो फ्रेंड्स, हर व्यक्ति के अंदर मान सम्मान की चाहत होती है, मेरा नाम हो जाए, मेरे को नेम फेम मिले, है ना। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि भाई नेम फेम भी उसको मिलता है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, राइटिसनेस से अपना जीवन निर्वाह करता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी ड्यूटीज से भागोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तब तुम्हें पाप लगेगा अगर तुम अपनी ड्यूटी से भागोगे। तो एस्केप नहीं करना कि चलो अपनी ड्यूटी से एस्केप कर लिया और बैठ गए भक्ति करने। भगवान क्लियर हमें बता रहे हैं कि भाई अपनी ड्यूटीज करो, बेस्ट वे में करो, बस सिंपल बात है ना। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें बार बार यही बता रहे हैं कि भाई हमें अपने कर्तव्य का पालन, जो भी हमें असाइन ड्यूटीज है, उनको बेस्ट वे में करना है ना। तो अर्जुन के माध्यम से हमें भी भगवान का ये संदेश है कि हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करें, और बता रहे हैं कि भाई तुम अपनी ड्यूटीज अच्छे से करोगे ना तो तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिलेगी। ये बात तो आपने भी ऑब्जर्व की होगी कि जब हम अपनी ड्यूटीज को सिंसियरिटी से करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना, और दिन भी अच्छा लगता है कि यार आज मेरा दिन बहुत यूटिलाइज हुआ, आज मैंने कुछ किया और सिंसियरिटी से वो काम मैंने पूरा भी किया है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। जब अपना काम बेस्ट वे में करते हैं तो दूसरे लोगों की नजरों में भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और हम पापों से भी बचे रहेंगे, है ना। तो भगवान का हमें ये क्लियर मैसेज है कि हमें अपनी ड्यूटीज सिंसियरिटी से निभानी है, और फ्रेंड जो सुख अपने ड्यूटीज को निभाने में है, अपने कर्तव्यों को निभाने में मिलता है ना, जो सुख छल कपट ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से दूर रहने से मिलता है ना, वो सुख कभी भी हमें इंद्रिय भोगों से नहीं मिलता फ्रेंड, संसारिक भोगों से नहीं मिलता है ना। संसारिक भोग तो फ्रेंड्स पशु पक्षी भी करते हैं, संसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है, वो भी जन्म लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और एक दिन मर जाते हैं, बस वो इतना ही करते हैं, है ना। लेकिन कर्तव्य पालन का अवसर, अपने आप को जहाँ पे आज हम हैं, परसेंटेज में अपने आप को ऊपर लेकर जाना, इसका अवसर फ्रेंड्स हमें इस मनुष्य योनि में ही हमें मिला है। तो भगवान का हमें क्लियर मैसेज है कि भाई कर्तव्य पालन करो, हमें अपनी ड्यूटीज भगवान के साथ भगवान को अपने जीवन में ऐड करके करनी है, और अपनी ड्यूटीज को पूरा करने में नहीं रोना है, संताप नहीं करना है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर एवरीवन, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, आप रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स, हरी बोल।
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मोना जी, आज का सत्संग भी बहुत ही वंडरफुल था। उसमें आज के श्लोकों से जो मेरी लर्निंग बनी है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें ये समझा रहे हैं कि हमारा जन्म हुआ है और हमें अपना शरीर छोड़ के एक दिन जाना ही है। तो जो भी हमें असाइन ड्यूटीज मिली है उसको बेस्ट वे में करते हुए जाना है। भगवान ये कह रहे हैं कि जब हमारी लाइफ में, सच में मोना जी, कि जब भी चेंजेस आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, तो टच वुड की भगवत गीता के आने के पढ़ने के बाद, मतलब लाइफ में आपके माध्यम से जब हमने भगवत गीता पढ़ी तो नए सिरे से जैसे मेरी लाइफ शुरू हुई ना, अंदर से डरना बड़ा ही कम हो गया। जो भी सिचुएशन फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, तो उसमें हम संभाव में रहते हैं। हमें जब रोने की आदत पड़ जाती है हर काम में, हर ड्यूटी को करते हुए, तो सच में ये बात मैंने खुद भी फील किया, जब हम कोई भी काम करते हैं रो धो के करेंगे तो वो काम अच्छा होता ही नहीं। जब भगवान का नाम जाप करते हुए और अपनी ये कि भगवान ने हमें ये ड्यूटी दी है, फिर इस वे में करते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के लिए ही काम कर रहे हैं, तो वो काम भी एक एनर्जेटिक होके जब हम करते हैं तो काम भी अच्छा होता है। तो भगवान हमें ये समझा रहे कि राग द्वेष से ऊपर उठकर करनी है, हर एक नेम फेम के लिए नहीं करनी है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स ममता जी, ब्यूटीफुली आपने भी दोनों श्लोकों को अच्छे से समझा दिया। और बिल्कुल देखो, अगर हम सीखना चाहे तो कितना कुछ हमें सिखा रहे हैं भगवान, है ना। ड्यूटीज कैसे करनी है, कैसे जीवन जीना है, आगे भी ये भी सिखाएंगे कैसा हमें खाना खाना चाहिए, कैसा हमें पानी पीना चाहिए। तो मतलब अगर हम ओपन रहे ना कि हमें बहुत कुछ सीखना है, मेरी लाइफ छोटी सी है, ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं जो मुझे पता नहीं है और मुझे पता होनी चाहिए। इस ह्यूमन लाइफ का पर्पज ही क्या हुआ कि अगर मुझे चीजें समझ ही नहीं आई, ये मैंने जानी नहीं ये चीज, है ना। तो भगवान के आगे ये प्रार्थना करनी, जो चीजें मुझे जानने लायक है मुझे पता होनी चाहिए, कैसे तुम्हें नेम वेम मिलेगा ये भी हमें बता रहे हैं। अगर हम अपनी ड्यूटीज अच्छे से करते हैं, हम देखते हैं ना दूसरे लोगों के, लोग अच्छा से अपना ड्यूटीज कर रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है, तो उनके लिए हमारे मन में एक अच्छे से भाव आते हैं ना कि यार देखो कितने अच्छे से वो अपनी ड्यूटीज करता है या करती है ना। तो मतलब उसको नेम फेम मिलता है ना, उसको जो तुम अपनी ड्यूटीज करके लोगे ना, वो ही यश, एक्चुअली यश है ना। तो कितना कुछ समझा रहे हैं दो श्लोकों में, देखो कितनी बड़ी लर्निंग्स अगर हम चाहें उसको लेने तो, है ना। तो वो उससे होता क्या है, बस फालतू जो पुराने विचार थे ना, जो पुराना थिंकिंग पैटर्न था ना फ्रेंड्स, वो हमारा बदल जाता है एक्चुअली भगवद गीता पढ़ने से, है ना। थैंक यू सो मच ममता जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल।
हरी हरी बोल मोना जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरी आज के सत्संग से यही लर्निंग बनी है, जितना मुझे समझ आया, कि भगवान जी कह रहे हैं कि ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, ये चलता रहेगा। तो हमें अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने मुख से भगवान का जाप करना है, कानों से हरी नाम सुनना है और हाथों से अपनी ड्यूटी करनी है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करने पे, जैसे आपने मेरे को बोला था, मैं आपकी हर एक बात पकड़ती हूँ। जैसे लास्ट टाइम आपने मेरे को बोला था कि जब लो फील करो या मन उदास हो तो भगवान कह रहे हैं कि माला बढ़ाओ या डिवोशन बढ़ाओ, तो मैं वो चीज जब भी मेरा लो फील करती हूँ तो वही चीज करती हूँ कि माला करना शुरू कर देती हूँ कि आज इतनी नहीं इतनी करनी है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो कितना काम आया है, मैं 8-10 साल मेरे को ये ससुराल में सेटिंग होने में लग गया कि मैं कैसे सेटल हूँ। मेरे को किसी की भी समझ नहीं आती थी, थोड़ी सी बात होती तो मैं डिप्रेशन में चली गई। तो मैं आपको लास्ट इसी ईयर की बात बताती हूँ, इसी सत्संग के चलते मैंने कभी शेयर नहीं किया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ था, तो अभी बीच में ही था काम, तो इनको आ रहे थे घर में बैंक से, तो किसी ने काफी जगह इनको मारा भी, तो पैसे मोबाइल जो कुछ भी हुआ। तो ये जैसे घर आए तो मैं 2-2.5 साल में मेरे को इतना फर्क आया कि मैं घबराई नहीं, मैंने पूछा ये क्या हुआ, तो ये कह रहे कि ऐसे ऐसे बात होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हो। तो काम रुक गया, वो सब मेरे को चिंता नहीं है कि हो जाता है। मेरे को ये आया कि भगवान पे विश्वास, स्टेबल कैसे रहना, मैंने सत्संग से सीखा है, तो वो मैं स्टेबल रही। मैंने इनको भी काम किया कि कुछ नहीं होता, यहाँ में सोसाइटी का बड़ा होता है कि सोसाइटी में इमेज डाउन नहीं हो जाए, हम ये सब लेके चलते हैं। तो जब हम हरि पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि हरि ने सब कुछ ठीक कर देना, दो चार दिन लगते हैं कोई भी बात होती है अच्छी या बुरी, तो दो चार दिन के बाद सब फिर से वैसा ही हो जाता है। तो बस अब मैंने सुख दुख को भी ऐसा ही मान लिया, हरि चरणों में छोड़ दिया है, तो अपना काम करना है, हरि गुण गाना है बस। हरि हरि बोल,
हरि हरि बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज किरण जी, ब्यूटीफुली आपने अपना जो एक्सपीरियंस बताया है ना कि जो अभी लॉस हुआ है ना आपके हस्बैंड के साथ, जो अभी बात हुई, तो मतलब इतनी बड़ी बात होगी फिर भी आप संभाव में रहे, डिप्रेस नहीं हो गए, अरे ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया, है ना। जब पहले हम ऐसे ही तो करते थे हम लोग, छोटी सी बात हो जानी, चाहे बात ही ना हो, बिना बात की बात कैसे बढ़ानी है, ये हमसे कोई सीख ले, है ना। तो अब क्या होता है कि बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आती हैं तो हमें क्या लगता है कि अरे कुछ तो लर्निंग्स मुझे मिली है ना उसमें। हमेशा आप देखना, आप थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करना, जो भी लाइफ में हमारी बात होती है ना, चाहे मैं बोलती हूँ फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हो चाहे अनफेवरेबल, वो हमें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं, है ना। हमें ही वो लगते हैं कि यार गलत सर्कमस्टांसेस है मेरे साथ, क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। भगवान ने हमें नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है ना। तो वो कैसे लेकर जाएंगे, पहले हमें इन चीजों से हटाते हैं ना। वो भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं तो कुछ तो भगवान का कोई डिवाइन प्लान होगा ही ना, पता नहीं था ये हो कह रहा है, कुछ पता नहीं था, बिल्कुल लिटरली अज्ञानता वाला जीवन है ना। तो अब क्या होता है, बहुत ज्यादा सुख आ जाए तब भी कोई इतनी खुशी नहीं हो जाती, और बहुत ज्यादा कोई दुख हो जाए तो कोई इतना ज्यादा डिप्रेस नहीं हो जाते। वही लगता है कि यार ये परमानेंट तो है नहीं है, स्थाई नहीं है, ये सब चीजें चली जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम ही स्थाई नहीं है, हम ही परमानेंट नहीं है, तो ये जो सिचुएशन आई है इन्होंने कौन सा परमानेंट रहना है ना। थैंक यू सो मच किरण जी। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरि बोल।
हरि बोल एवरीवन।
हाँ जी मीनाक्षी जी, आप बात कर सकते हो। हरि बोल।
हरि हरि बोल। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था मोना दी, और सच में ये हमारे लिए ही था, एक्चुअली हम सबके लिए था, अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण हम सबके लिए ये सब जो श्लोक थे। इस श्लोकों से मेरी ये लर्निंग बनी है कि हम जब जन्म लेते हैं इस धरती में आते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं इस मटीरियल वर्ल्ड में कि हम प्रॉफिट और लॉस के बिना ना कोई काम करते ही नहीं है। हमारा इस काम के करने से हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और एक और अगर हमें फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उसमें हम अपनी जय जयकार करते हैं, हम किसी का थैंक्स कि वो हमारे पास शायद प्रभु कृपा है, वो चीज हम बिल्कुल रिलेट नहीं करते। और अगर हमें फेवरेबल नहीं मिलते हैं रिजल्ट, तो हम इतने दुखी हो जाते हैं कि उसको कैसे कवर अप करना है, उसमें शायद ज्यादा खो जाते हैं, या फिर दुखी हो जाएंगे, हम गिव अप कर देंगे, हम हार जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर आप जन्म और मृत्यु इस दोनों चीजों को अच्छे से पहचान ले, और इन बिटवीन ये सारी चीजें हमारी जो है, दीज आर जस्ट ड्यूटीज जो हमें परफॉर्म करनी है, उनके साथ जीरो अटैचमेंट रख के वो करनी ही करनी है, कि बहुत ज्यादा खुशी में खुश होना, हमें संभाव रहना है, ज्यादा अटैचमेंट नहीं करनी है, वो चलती रहेंगी। और अगर हम इनके साथ प्रॉफिट और लॉस के साथ अटैचमेंट, उसके साथ अटैचमेंट करके अगर हम, हो सकता है हम अपनी ड्यूटीज ही परफॉर्म करना छोड़ दें, तो वो भी भगवान कहते हैं कि किसी पाप से कम नहीं है, तो वो भी पाप के ही इक्वल है। तो हमने भक्ति भी करनी है, भक्ति तो करनी है, लेकिन उसके लिए हमें ये नहीं कि हमने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करना छोड़ देनी है। टैगलाइन भी है हमारे गोलोक एक्सप्रेस की कि बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, और हमने हर काम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए उस प्रभु की कृपा को याद रखना है, उनको धन्यवाद करना है, और उनके अपने मन को, इंटरनल हमारी जो इनर कॉन्शियस है, उनको उन्हीं के साथ जोड़ के रखना है। बाकी हमारी ड्यूटीज हमारी बॉडली लेवल पे परफॉर्म होती रहेंगी, उनके साथ क्या रिजल्ट है क्या नहीं है, उस सब को हमने हरि पे छोड़ देना है। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल।
हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज मीनाक्षी जी, ब्यूटीफुली आपने सारे सत्संग को अच्छे से रिवाइज कर दिया, और बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग ना अपने सारी जिंदगी, अपने सारे दिन बस यही सोचते रहते हैं कि मेरा क्या प्रॉफिट है, मेरा क्या प्रॉफिट है, लॉस नहीं सोचते हम, प्रॉफिट सोचते हैं कि बस किस बात में मेरा प्रॉफिट हो जाए, और सारी जिंदगी हम इसी में निकाल देते हैं, सुख दुख के ट्रैप में फंसे रहते हैं कि सुख हो जाएगा तो हम कितने कितने दिन इसी में फंसे रहते हैं, उसमें एक्साइटेड हो जाएंगे, ईगो में चले जाते हैं, कुछ फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, उसमें अपने आप को सुधारने में फोकस नहीं करते कि भगवान ने हमें कंफर्ट्स दिए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। हमें अपने साथ दूसरों को भी भला करना है, साथ में अपना जो नेगेटिव क्वालिटीज है उसको मैं इम्प्रूव करती हूँ थोड़ा सा। भगवान ने मुझे अगर दे ही दिए हैं कम्फर्ट्स लाइफ में तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लाइफ को और बेटर वे में अपने आप को सुधारने में लगाना है, है ना। और फेवरेबल कंडीशंस से कुछ लाइफ में अनफेवरेबल सिचुएशंस आ जाती हैं तब हम उसमें फंस जाते हैं, है ना। हर वक्त यही सोचते रहेंगे यार कैसे मैं इस ट्रैप से बाहर आऊं, इतना दुखी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बस सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूँ। कभी छोटी सी भी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या लगता है सबसे ज्यादा दुखी तो मैं ही हूँ, है ना। क्योंकि हम ना हर सिचुएशन में अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं फ्रेंड्स, है ना। हमसे अपने से थोड़े से नीचे लोगों को नहीं देखते कि देखो लोगों के पास खाने को खाना नहीं होता और हमें तो खाना भी बनाना पड़ जाता है तो हमें लगता है कि मुझे बनाना पड़ रहा है ना। लोगों के पास मतलब जॉब्स नहीं है और हमारे पास जॉब्स हैं अगर तो हमें लग रहा है कि मेरे को करना पड़ रहा है। बिजनेस है तो मुझे लग रहा है यार मुझे करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है ना। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम लोग बस इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। अच्छा कुछ हो जाता है तो बस हमें लगता है कि बस मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं है, और अगर कुछ अनफेवरेबल हो जाता है तो हमें लगता है कि बस मेरे से दुखी कोई नहीं है, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई सिंपल बात है कि तुम इन सब चीजों से बाहर आओगे तभी कुछ और सोच पाओगे ना। इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं बस हम लोग, खाना पीना सोना, और एक दिन ऐसे सोचते सोचते हमने चले जाना इसके ऊपर, इसलिए हम कुछ सोच नहीं पाते। बस जैसे बाकी दुनिया जी रही है छल कपट में, ईर्ष्या द्वेष में फंसी हुई है, हमें लगता है कि बस हम भी बस अच्छा ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग हैं वो सेम लाइफ जी रहे हैं तो हमें लगता है कि हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो हमें समझ आते हैं कि एक्चुअली हम कर क्या रहे थे और हमें करना क्या है। तो फ्रेंड्स जो नए डिवोटीज है मैं उनको बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई आप लोग सुनो, जो पुराने सत्संग आपसे छूट गए हैं तो उनको दोबारा से सुनो, इससे हमारा ही भला होगा। गोलोक एक्सप्रेस का कोई भला नहीं होने वाला है, निखिल जी का भला नहीं होने वाला है, हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। हम गोलोक एक्सप्रेस में जुड़े हैं तो हमें यही रास्ता पता है, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन वाला, है ना। और हमने भी यही रास्ता अपनाया तो हमारे जीवन बेटर हुआ है, तो आप लोगों का जीवन भी बेटर हो सकता है, सिंपल है ना। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। हाँ जी नीना जी, आप बात कर सकते हो। हरी बोल।
हरी बोल एवरीवन। हाँ जी मोना जी, हमेशा की तरह आज का सत्संग भी बहुत ही डिवाइन और आनंदमय रहा, और सच में आज आपने जो दो वर्सेस हमें कराए वो भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से, मतलब अगर हम भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इस रास्ते पर चले हैं, तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, करने वाले हैं। तो बाकी सब डिवोटीज ने भी बड़े अच्छे रिव्यूज दिए, तो मैंने भी इनसे यही लर्निंग्स ली कि भगवत गीता पढ़ने से पहले सच में हम इतने ज्यादा मतलब कंफर्ट जोन में, माया में लीन थे कि अगर लाइफ में छोटी सी भी चेंजेस आती थी तो हम अपने आप को दुनिया का सबसे दुखी पर्सन मानते। परंतु प्रभु श्री हरि की कृपा से हमने मोना जी के माध्यम से भगवत गीता को समझा, गोलोक एक्सप्रेस के मेंटर निखिल जी के भी हम बहुत बड़े आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया और हम भगवत गीता को समझ पाए और अब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब पहले के जीवन में और अब और आज जो हम जीवन जी रहे हैं प्रभु कृपा से, उसमें बहुत से बदलाव आए हैं और हमने इस बात को समझा है कि जीवन में इसमें पर अनेकानेक बदलाव जो है वो आने ही, और हमें जो है अर्जुन की तरह अपने जीवन में जब हमें लगे कि ये बहुत टफ सिचुएशन है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेस हो जाते हैं कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे, तो हमने यही समझा कि हमें अर्जुन की तरह जो है प्रभु को अपना गुरु मानना है और प्रभु के आगे यही प्रेयर्स करनी है कि है मैं बहुत ज्यादा मूर्ख प्राणी हूँ, मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है, प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करें। यानी हमें उस सिचुएशन में प्रभु के बताए गए रास्ते को ही अपना धर्म मानना है। हमने ये समझा कि प्रभु की जो गाइडेंस है वही ट्रू गाइडेंस है फ्रेंड, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है और हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और मोना जी ने भी हमें यही बताया कि जो भी हमारे जीवन में टफ सिचुएशन आती है और हम इस बात को समझ भी रहे हैं तो हमें यही लगता है कि ये अवश्य ही हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाने वाली है। यानी अब हम कोई भी जीवन में टफ सिचुएशन आए तो फ्रेंड्स हम उसमें इतने ज्यादा घबराते नहीं है, क्योंकि हमें प्रभु पर फेथ है, हम प्रभु के रास्ते पर चले हैं, प्रभु को हमने अपना गुरु माना है, तो हमें लगता है कि ये जो है ये एक बदलाव है। यानी इन वर्सेस में भी हमने यही समझा कि हमारे जीवन में समय पर बदलाव आने हैं और ये जो हमारा शरीर है यही हमारा नहीं है और हम जो हैं हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। जब इस बहुत बड़े सच को हम अपने जीवन में मतलब ये सच मानकर अपने जीवन में चलेंगे तो फ्रेंड्स हम किसी भी सिचुएशन में नहीं घबराएंगे, जो भी हमारा कर्तव्य है उसका हम जो है बखूबी उसका पालन करेंगे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नीना जी, ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज, ब्यूटीफुल। आपने भी अच्छे से दोनों श्लोकों को अच्छे से समझा दिया और बाकियों को भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। फ्रेंड्स, हम क्या सोचते हैं एक्चुअली कि जैसा हमारा जीवन चल रहा है ना, बस वैसा ही चलता रहे, है ना। अगर अच्छा सरकमस्टेंस चल रहे हैं, अच्छा सुख का जीवन चल रहा है, कंफर्ट लाइफ चल रही है, तो हमें लगता है बस ऐसी लाइफ चलनी चाहिए, है ना। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ही परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान हमें बार बार बताते हैं, अगर परिवर्तन नहीं होता तो जो हम पहले हम बाल्यकाल से आते हैं, फिर हम मिडिल एज में आते हैं, फिर हम वृद्धावस्था में आते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। ऐसे कोई भी चीज देख लो आप, जो भी भौतिक चीजें हैं, वो सारी चीजें परमानेंट नहीं है, सारी चीजें जाने वाली है ना। मतलब देखो, भगवान हमें आत्मा तत्व का ज्ञान दे रहे हैं कि भाई देखो, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं, तुम इसको छोड़कर भी चले जाओगे। तुम जो भी एनर्जी हो, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जो भी है, तुम उसको भी छोड़ के चले जाओगे। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें इस शरीर के जो भी तुम्हें रिलेशंस मिले हैं, जो भी तुम्हारे संबंधी हैं, जो भी तुम्हारे परिजन हैं, जिनके लिए तुम इतना रोते हो, इतना हाहाकार मचाते हो, उनके लिए, अपने बच्चों के लिए इतना रोते हो, है ना, दूसरों से भी झगड़ लेते हो अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए, जो सो कॉल्ड हमने अपने बनाए होते हैं, उनके लिए हम दूसरों से भी लड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं भी तुमने सबको छोड़ देना है, तो हमें कितनी बड़ी लर्निंग मिल जाती है कि भाई अगर सब कुछ ही हमने छोड़ देना है तो क्यों ना लाइफ को बेटर वे में जी लें। सिर्फ चार लोगों से उठ के पूरे जो भी भगवान ने बनाए हैं लोग, उनके साथ हम एक बेटर रिलेशन मेंटेन करें ना। क्यों इन लड़ाई झगड़ों में फंसे पड़े हैं, क्यों हमें छल कपट वाला जीवन जीना है जिससे हम दुखी रहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, भी सिंपल लाइफ जियो, जो मैं जीता हूं एक ना। तो भगवान कह रहे हैं भी सिंपलिसिटी वाला, सादगी भरा जीवन जियो, बिना छल कपट के वो काम करो जो मुझे पसंद है, सिंपल, बस भगवान के कहे अनुसार जीवन जीना, बस जो भगवान कह रहे हैं बस हमें वो करना है ना, राइटनेस से जीवन जीना। मतलब वही चीजें सीखने को बोल रहे हैं भगवान हमें, वापिस वो जो ट्रैक हमारा था ना, जो हम छोड़ देते हैं दुनियादारी में आके, हम छोड़ देते हैं वो सारी चीजें। हमें लगता है कि नहीं यार, दुनिया ऐसी है तो मुझे भी ऐसे बनना है ना। थैंक यू सो मच नीना जी। तो ठीक है, फिर हम भजन की तरफ चलते हैं। किरण जी, आज आपकी भजन की टर्न है, भजन गा सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री श्री राधे श्याम सुंदर की जय। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते। राधे कौन से पुण्य ये तूने, हरि रोज तेरे घर आते। राधे जब सोला श्रृंगार करे, राधे जब सोला श्रृंगार करे, हरि दर्पण आप दिखाते। हरि दर्पण आप खाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब भोजन तैयार करे, राधे जब भोजन तैयार करे, हरि मांग मांग कर खाते हैं। हरि मांग मांग खाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब जमुना जल भरन गई, राधे जब जमुना जल भरन गई, हरि मटकी आप उठाते हैं। हरि मटकी आप उठाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे रे आते हैं। हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज रोज तेरे घर आते हैं, राधे जब तू रास करे न कहे, राधे जब तू रास करे न कहे, हरि बंसी आप बजाते हैं, हरि बंसी आप बजाते हैं, हरि बंसी आप पुण्य किए तूने, हरि रो तेरे घर आते, हरि रो तेरे घर आते।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, ब्यूटीफुल भजन गाया आपने किरण जी, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो प्रेयर्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम
राम,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरी हरी बोल एवरीवन, हरे बोल, हर घर मंदिर हर मन,
हर मन,
जय श्री राधे कृष्ण हरि बोल।